मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं और यह घटना सच्ची ही नहीं है बल्कि एकदम ताजी भी है। ये दो तीन दिन पहले ऑलमोस्ट घटी हुई घटना है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में घटी हुई घटना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुराने होने के कारण मेरे दिमाग में विस्मृति की कोई स्थिति नहीं है कि थोड़ा बहुत उसमें मिलावट हो गया हो। और दूसरा है चूंकि मेरे पड़ोस में घटी घटना है तो इसका मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं, मतलब इसमें कोई मध्यस्थ नहीं है। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यू कह लीजिए बताने जा रहा हूं, खुद मैंने उसका अनुभव किया है। बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मुझे यह बात बताई हो, इसलिए आप इस घटना पर ज्यों का त्यों 100% यकीन कर सकते हैं। और फिर इस घटना में जो भावना छिपी हुई है, जो तथ्य छिपा हुआ है, जो सार छिपा हुआ है, जो जीवन छिपा हुआ है, जो जिंदगी का स्वाद छिपा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि जो गंध छिपी हुई है, इन सबको जरा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैंने ढेर सारी चीजें बता दी और आप सबको लग रहा होगा कि ये सब क्या चीजें होती हैं, लेकिन मित्रों ये चीजें होती हैं। हम नहीं जानते, हम पकड़ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज होती ही नहीं है। वो चीजें तो होती हैं, अब वो हमारे रिसीवर के ऊपर है कि हम उसमें से कितनी चीजें रिसीव कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर कोई ट्रांजिस्टर खराब हो जाए तो बट नेचुरल है कि उसमें फिर कोई चैनल लगेगा नहीं, कोई बैंड लगेगा नहीं। और अगर वो ठीक ठाक है तो देखिए कि वही एक ट्रांजिस्टर या वही एक टीवी कितने सारे बैंड्स और कितने सारे चैनल्स पर आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से हमारा भी तो कोई ना कोई चैनल होता होगा। जब आदमी का बनाया हुआ ट्रांजिस्टर और टीवी में इतने सारे चैनल्स हो सकते हैं तो फिर हमको तो प्रकृति ने बनाया और एक दो दिन में नहीं बनाया, लाखों साल से हम बनते चले आ रहे हैं। तो आइए जरा से पहले उस घटना को देखते हैं। दरअसल हुआ ये कि 3-4 दिन पहले की बात है कि हमारे पड़ोस में एक हमारे पड़ोसी रहते हैं और उनकी जो मदर है वो काफी समय से बीमार चल रही थी। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं, छोटे वाले बेटे, वो सिक्किम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, तो वो सिक्किम ही चली गई थी इस बीच में। लेकिन सिक्किम में उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, फिर डॉक्टर्स ने देखने के बाद कहा कि नहीं आप इनको मैदान में ले जाइए, क्योंकि सिक्किम ऊंचाई पर है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो फिर उनको यहां ले आया गया, हालांकि ज्यादातर वो यहीं भोपाल में ही रहती थी, भोपाल में ज्यादातर समय रहती थी, कभी कभी वहां चली जाती थी। यहां ले आया गया और उनकी तबीयत काफी ठीक ठाक हो गई, काफी ठीक रहने लगी, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं थी कि जिन्हें आप कह सकें कि वो स्वस्थ हैं या बहुत ठीक ठाक जीवन जी रही हैं, ऐसा नहीं था। वो बिस्तर पर ही रहती थी। ठीक है, चलिए हम लोग हो आए, देख आए, बातचीत होती रहती थी। लेकिन एक दिन शाम को अचानक उनकी बहू आई और बिल्कुल रोता हुआ चेहरा लेकर के, और उन्होंने कुछ बातें की, कुछ सहयोग मांगा और ठीक है बात खत्म हो गई। और उसमें संदेश ये था कि आई नहीं रही, यानी कि जो उनकी मदर इन लॉ हैं वो दिवंगत हो गई, ये खबर थी। ठीक है मित्रों, हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही मतलब इमोशनल क्षण थे वो। मैं फिर तुरंत गया, बगल में उनके दो बेटे हैं, एक बड़े और एक छोटे, तो छोटे तो सिक्किम कैडर में है, वहीं रहते हैं, वो भी इस बीच में आए हुए थे, वो मदर के साथ वो भी आ गए थे, क्योंकि उनको भी बहुत खराब लग रहा था कि माँ इस हालत में है, तो वो भी छुट्टी लेकर के यहीं आकर कुछ समय से रह रहे थे। तो मित्रों फिर बातचीत होने लगी, व्यवस्था की बात होने लगी। यह हुआ कि दाह संस्कार कल सुबह 11 बजे किया जाएगा, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था, 6:30 तो बज चुके थे। फिर और व्यवस्था की, लोग आएंगे, ये है चेयर्स कहां से, वो सब चीजों के बारे में बातचीत हुई। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा घर बिल्कुल एकदम खुला है, आपको जो मदद चाहिए, जो जिन चीजों की जरूरत हो आप बताइए, भोजन हम अपने यहां बनवा देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो भी जरूरत होगी हम बताएंगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर कहा कि अच्छा आपका ड्राइवर कहां है, जरा हमें उसकी जरूरत थी। मैंने कहा कि बस वो अभी आने वाला है और चला जाएगा। तो बातचीत ऐसे ही होने लगी कि क्या इंतजाम है, कैसे टेंट लगना है बाहर और क्या होना है। तो उसमें अब देखिए मैं कि मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। इस बीच में उनकी तबीयत डेथ होने से एक दिन पहले कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, राइट। तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो अभी हॉस्पिटल में हैं, पर ये मान करके चल रहा था कि जो कि घर में ही वो रहती थीं तो घर में ही अभी भी होंगी, यानी कि उनका निधन घर में ही हुआ होगा, लेकिन इनफैक्ट उनका निधन हॉस्पिटल में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि असली में ड्राइवर की जरूरत इसलिए है कि वो हॉस्पिटल में कुछ चीजें हैं और आई भी हॉस्पिटल में है, तो हमें ड्राइवर की मदद की जरूरत होगी। मैंने कहा कि ठीक है, वो तो ड्राइवर आ जाएगा और आपके साथ चला जाएगा। तो मैंने ऐसे ही बातचीत में पूछा कि अच्छा, आई हॉस्पिटल में है तो आई हॉस्पिटल में ही रहेंगी, क्योंकि 11 बजे कल 11 बजे दूसरे दिन 11 बजे उनका उनके दाह संस्कार के लिए जाने का प्रोग्राम बना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब देखिए कि यहां पर ध्यान दीजिए, उन्होंने बड़े मासूमियत के साथ कहा, उनके बड़े बेटे ने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आई वहां अस्पताल में अकेले कैसे रहेंगी, उन्हें हम रात में अभी लेकर के आएंगे। मित्रों, इतना सुनना था कि मैं अंदर से हिल गया और बस मैं रोते रोते किसी तरह से अपने को रोक पाया। देखिए वो क्या कह रही है, वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आई अस्पताल में अकेली कैसे रहेंगी, अब आई नहीं रही हैं, आई का निधन हो गया है, उनका शरीर शून्य हो गया है, चेतना शून्य हो चुकी है, वो अकेले हैं, दुकेले हैं, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि अब क्या होना है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उनके मुंह से वाक्य क्या निकल रहा है कि नहीं नहीं रात में आई अकेली कैसे रहेंगी, देख रहे हैं आप। और मित्रों, उनको लेकर आया गया, राइट। फिर ठीक है, आगे के जो होने थे वो सब हुए। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये भारत है और मुझे लगता है ये लगाव है, जो सच्चे लगाव है, जिसे आप रियल सेंस में कहते हैं। मृत्यु के बाद भी वो स्मृतियों में जीवित हैं और स्मृतियां तो छोड़िए, वो भावनाओं में भी जीवित हैं, वो गई नहीं है, और ये भारत है। मैं अब आपको इसके रूबरू बिल्कुल बरक्स दूसरा एक किस्सा सुनाता हूं, जो 2011 का है, जब मैं और मेरी पत्नी अमेरिका गए थे। तो दूसरे दिन हम वहां एक शख्स के यहां रुके, लॉस एंजल्स में वो रहते हैं, उनका नाम है रामजी भाई पटेल, बहुत ही प्यारे व्यक्ति, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, और बहुत ही, मतलब मैं अब कितने शब्द उनके लिए इस्तेमाल करूं, बहुत ही मासूम से बहुत मस्त व्यक्ति, राइट। उनके बारे में बड़ा फेमस है कि अगर रामजी भाई से किसी को मिलना है तो उसे शमशान घाट पे जाकर के मिलना पड़ेगा, वो वहीं रहते हैं, वो कोई उसका व्यापार नहीं करते। दरअसल रामजी भाई करते ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाए अमेरिका में तो, और अगर उनको जरूरत महसूस हो रही है, तो वो रामजी भाई को फोन कर देंगे और रामजी भाई फिर उनके दाह संस्कार की पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से करते हैं, जो भी उन्होंने संस्था बना रखी हो। और वहां उस समय 2011 की बात बता रहा हूं मैं, दाह संस्कार करने का जो खर्च आता था वो लगभग $1500 के करीब आता था। अगर आज के संदर्भ में हम कहें तो कह लीजिए 1 लाख 1.25 लाख रुपए के बीच में खर्च आता था दाह संस्कार के, क्योंकि ताबूत लेना होता था, फिर आपको गाड़ी मंगवानी है, गाड़ी से फिर वहां तक जो शव है वो जाएगा या जो भी होते हों, तो लगभग आज के संदर्भ में 1 लाख रुपए का खर्च आता था। तो बहुत से गरीब परिवार के लोग होते थे, वो नहीं कर पाते थे, तो रामजी भाई वही काम नहीं करते थे, ये उनका सामाजिक काम था और वो बहुत बड़ा सामाजिक काम था और उसमें वो लगे रहते थे। तो एक दिन में कई हो रहे हैं तो यही कहा जाता था कि वो वहां मिलेंगे। खैर, उन्होंने जो स्थितियां बताई वो इसके बिल्कुल विपरीत है। स्थितियां ये हैं कि अगर किसी के माता पिता का निधन हॉस्पिटल में हो जाए, किसी का भी निधन हॉस्पिटल में हो जाए, तो बकायदे वो हॉस्पिटल को उसका किराया दे करके कहते थे कि आप वहीं रखिए, और जो प्रोसेशन निकलता था, मतलब जहां से वो बिल्कुल वहां ले जाना होगा अंतिम संस्कार के लिए, वो वहीं से फिर उसको ले जाते थे। यहां मैं एक चीज थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि ये केवल भारतीय, मतलब ये केवल अमेरिकन परिवारों में ही है या भारतीय परिवारों में भी है, इस बारे में मैंने नहीं पूछा, जो मुझसे गलती होगी कि क्या भारतीय भी ऐसे करते हैं, इसके बारे में मित्रों मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन कम से कम अमेरिकन परिवारों में तो ऐसा ही है, वो घर नहीं लाते हैं। अब यहां आपके सामने दो संस्कृतियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी है, एक अमेरिका की संस्कृति, अमेरिका का जीवन, जो बहुत उच्च आर्थिक स्थिति का जीवन जी रहा है, जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ऊपर है, जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है, एक हमारा देश भारत जो अभी भी जद्दोजहद में, आर्थिक विकास के जद्दोजहद में लगा हुआ है। अभी भी हमारी आबादी अगर आंकड़ों पर ही भरोसा करें तो 15-20% गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, मतलब उसके पास पेट भरने के साधन नहीं है। और याद रखिए कि ये जो लगाव की बात है, ये केवल उच्च वर्ग में ही नहीं है या मध्यम वर्ग में ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर वर्ग में है ये जो लगाव। श्राद्ध पक्ष अभी अभी खत्म हुआ है, वो श्राद्ध पक्ष क्या है? वो इसी तरह के लगाव के प्रति व्यक्त की गई एक श्रद्धा का भाव है। अभी जिसकी मैंने चर्चा की वो लगाव है, और कुछ दिनों के बाद ये लगाव श्रद्धा में परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को समझने के लिए इन सब चीजों को भी समझना होगा। इनको समझे बिना आप हिंदुस्तान की सड़कों से, हिंदुस्तान के गांवों से हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या मतलब, इन सब चीजों से काफी अलग है। नो डाउट मैं कोई इस रूप में जो हमारी कमियां हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच पूछे तो उसकी जो समृद्धि है, जो उसकी एक बहुत बड़ी दौलत है, उस दौलत की तरफ एक तरीके से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि ये भी हम हैं, जो कम बड़ी बात नहीं है, और ये वो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा धनी बनाती हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी उन आई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इसी के साथ ही आप सबसे अनुमति भी चाहता हूं। नमस्कार।